પુસ્તક છઠ્ઠી, લેક્ચર નંબર 14. ઓમ નમઃ સિદ્ધેય, ઓમ નમઃ સિદ્ધેય, ઓમ નમઃ સિદ્ધેય. ઓમ શુદ્ધાત્મને નમઃ. નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્રાયાણમ, નમો લોયે સવસાહુણ. નમિયુણંતજિણમ અણંતણાણેન દિઠ સૌવઠમ, કમ્મપદે સવિહત્તિમ વોચ્છામી જહાગમં પયદો. યહ શ્રી વીરસેન આચાર્ય રચિત જયધવલા ટીકા હૈ, જો કષાય પાહુર તથા ચૂર્ણી સૂત્ર ગ્રંથો પર લિખી હુઈ હૈ, જિનકે કરતા હૈ ગુણધર ભટ્ટારક તથા યતિ ઋષભ આચાર્ય, જિન્હોને ભગવાન મહાવીર કે ઉપદેશ કે અનુસાર ઇન ગ્રંથો કી રચના કી હૈ. છઠ્ઠી પુસ્તક મેં અભી હમ પ્રદેશ વિભક્તિ અર્થાધિકાર દેખ રહે હૈ, और हम आए हैं पृष्ठ संख्या 91 पर. 91 उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म की बात चल रही है. उत्तर प्रकृतियों में मिथ्यात्व की बात देखी, 12 कषाय और 6 नौ कषायों की बात देखी, सम्यक मिथ्यात्व की और सम्यक प्रकृति की भी बात हमने देख ली. अब आगे का सूत्र देखते हैं. નૌસય વેદસ ઉકસય પદેસ સંતકમ્મમ કસ. એ નૌસય ચાહીએ ઉપર જો હૈ ને, ઓર વો એક શબ્દ ચાહીએ. નૌસય વેદ પ્રાકૃત મે, હા નૌસય વેદ, નૌસય હુઆ ને ઉપર ગાથા મે, गाथा नहीं सूत्र, सूत्र मुझे ऊ के ऊपर देखो. नीचे जो प्राकृत है ना, उसके सेकंड लाइन में लास्ट लास्ट में वहां कैसे लिखा है, नौसय वेदस्य, वैसे ऊपर चाहिए. वो ऊ और स उसमें गैप नहीं चाहिए, और ऊ के ऊपर बिंदी चाहिए. उसका अर्थ नीचे देखते हैं. नपुसक वेद का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म किसके होता है, यह सूत्र सुगम है. यानी सूत्र का अर्थ ख्याल में आवे ऐसा है. तो कहते हैं, गुणिद कम्मंसियो ईशानम गदो तस्स चरिम समय देवस्स उक्कसयम पदेश संतकम्मम. गुणित कर्मांश वाला जो जीव ईशान स्वर्ग में उत्पन्न हुआ, उसके देव पर्याय के अंतिम समय में उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होता है. मेरे ख्याल से एक इंद्रिय में जाने वाला लिया, हाँ नपुसक वेद का बंद करेगा. शंका, गुणित कर्मांश वाले जीव को ईशान स्वर्ग के देवों में क्यों उत्पन्न कराया है, उसका समाधान. त्रस बंधक के काल से स्थावर बंधक का काल संख्यात गुणा है. क्या कहते हैं, जो त्रस प्रकृति बांध रहा है और उसके साथ अन्य भी जो यथा योग्य प्रकृतियां बांधेगा, उससे स्थावर नाम कर्म का बंधकाल बड़ा है, संख्यात गुणा है. और उस स्थावर बंधक काल में पुरुषवेद और स्त्रीवेद का बंध संभव नहीं है. दो बातें हैं, स्थावर बंधक काल भी बड़ा है, और हमने देखा था जो जीव जहां उत्पन्न होता है जिस वेद के साथ, पूर्वभव में उसी वेद का बंध होता है, अंत में लास्ट लास्ट में उसी वेद का बंध होगा. तो यहाँ जब स्थावर का बंध कर रहा है तो नपुसक वेद का ही बंध होगा, क्योंकि स्थावर में तो पुरुष स्त्री का भेद है ही नहीं है. तो यह लंबे काल तक नपुसक वेद का भी बंध कर रहा है. अतः नपुसक वेद का बहुत द्रव्य संचय करने के लिए ईशान स्वर्ग के देवों में उत्पन्न कराया है. और सातवें नरक में स्थ स्थावर बंधक काल है ही नहीं जिससे वहां नपुसक वेद का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म हो। गुणित कर्मांशिक तो सातवें नरक के अंतिम समय वाला लिया, परंतु वहां नपुसक वेद का तो बंध नहीं है। क्यों नहीं है? वहां तो एक इंद्रिय में कोई नहीं आएगा, पंचेंद्रिय में जाएगा, वो भी संगी पंचेंद्रिय में जाए। हाँ, स्थावर नहीं, मैं नपुसक, मैं गलती से नपुसक बताया मैंने, स्थावर बंध काल नहीं है। नपुसक का तो होगा क्योंकि तिर्यंच में आता है, तो तीनों वेद संबंधी कोई भी वेद होगा। स्थावर का बंध नहीं है, मैंने गलती से नपुसक का बंध नहीं कहा।
ये वेद का बंध तो निरंतर होता है, कोई भी एक वेद का,
कोई भी वेद का बंध होता है।
यहाँ पे जो ये अंतर्मूर्ति है जो बंध के काल में, वहाँ पे क्या परमाणु का ग्रहण ज्यादा हो जाएगा?
ऐसा तो नहीं है,
क्योंकि यहाँ पे संसार में एक सागर तक के मैक्सिमम आ गए,
तो उसने स्थावर का बंध बहुत बार किया होगा। आयु कभी बांधी हो तो बात अलग, पर तो अन्यत्र भी अन्य नाम कर्म तो बनते रहते हैं ना, तो स्थावर बन ईशान तक है, इसलिए ईशान वाले को लिया। हाँ, सौधर्म से भी ज्यादा है। गुणित कर्मांशिक जीव नरक में, यानी एंड कहे और लेना कि उसके बाद उसका एकाद, यानी वहां से तिर्यंच में आएगा और फिर उसमें से एक दो भोग करके ईशान स्वर्ग में जाएगा, ऐसा जीव लिया। यानी वो नरक का अंतिम भाव नहीं हो सकता ना कि जहां से वो त्रस पर या स्थावर में आ जावे, उसके अभी दो चार भाव बाकी है, ऐसा ही जीव लेना है। देवों के लिए जो अधिक से अधिक गुणित कर्मांशिक कहलाएगा उसको लिया है। शंका नहीं, वो तो गुणित कर्मांशिक ही जीव ईशान में जन्म है। गुणित कर्मांशिक टुवर्ड्स द एंड लिया हो, अभी उसको उसकी त्रस पर या पूरी नहीं हुई है और ईशान में उत्पन्न कराया। फिर शंका, त्रस बंधक काल से स्थावर बंधक का काल संख्यात गुणा है, यह किस प्रमाण से जाना? संख्या तो रह गया, बहुत अच्छा। तो समाधान, त्रस बंधक का काल सबसे थोड़ा है, स्थावर बंधक का काल उससे संख्यात गुणा है, इस महाबंध के सूत्र से जाना। महाबंध में ये बात सूत्र में बताई है। फिर शंका, सातवें नरक की 33 सागर की स्थिति के संख्यात खंड करके उनमें से बहुभाग नपुसक वेद के बंध का काल होता है, यह बात प्रक्षेपक संक्षेपेण इस सूत्र से उपलब्ध होती है, किंतु ईशान स्वर्ग के देवों में अपने संख्यात वे भाग कम 2 सागर प्रमाण ही नपुसक वेद का संचय काल पाया जाता है। क्या कहना चाहते हैं? सातवें नरक की आयु लंबी है, 33 सागर है, अब उसमें बहुभाग संख्यात बहुभाग नपुसक वेद का बंध होता है, और ईशान की आयु तो 2 सागर है और उसमें संख्यातवा भाग कम, इतना नपुसक वेद का संचय नहीं, उसका 2 सागर का संख्यात बहुभाग लेंगे ना, वहां 33 सागर का संख्यात बहुभाग और यहाँ 2 सागर का संख्यात बहुभाग, तो ये तो छोटा काल है, ऐसा कहना है उसका। अतः नपुसक वेद के उत्कृष्ट संचय का स्वामित्व सातवें नरक में ही देना चाहिए। तो कहते नहीं, क्योंकि त्रस पर्याय की सब स्थिति को बहुत संकलेश वाले नारकियों में बिताकर ईशान स्वर्ग की देवायु प्रमाण त्रस स्थिति के शेष रहने पर, ये बात आई ना, त्रस स्थिति उसकी अभी इतनी बाकी है 2 सागर जितने, क्या कहते हैं? ईशान स्वर्ग की देवायु प्रमाण त्रस स्थिति के शेष रहने पर, सातवें नरक से निकलेगा, यथा योग्य दो चार भाव करेगा तिर्यंश में और फिर देव में उत्पन्न होगा, ऐसा जीव लिया है वहां पर। ईशान स्वर्ग के देवों में उत्पन्न होने वाले जीव के लाभ अर्थात उत्कृष्ट संचय अधिक पाया जाता है। यानी दोनों में कंपेयर करेंगे, एक तो गुणित कर्मांश वाला, अभी वो दो सागर बाद में जो बाकी है वो बाकी नहीं रखने उसके, वो पहले वाला ही गुणित कर्मांशिक लेना है कि नरक के बाद वो तिर्यंश पर्याय संगीकी करके फिर एकेंद्रीय में चला जावे, ऐसा लेना उसकी अपेक्षा। अब यहाँ का जो जीव है ईशान में जाने वाला, यानी नरक के बाद उसके एक दो भव जो कोई है तिर्यंश करके देव में जाएगा और बाद में उसकी त्रस पर्याय पूरी होगी, ऐसा जीव लिया है। तो उसका उत्कृष्ट संचय अधिक है। अथवा नपुसक वेद का गुणित कर्मांश वाला यह जीव एकेंद्रियों में से निकलकर जब त्रसों में भ्रमण करे तो उसे बहुत बार ईशान स्वर्ग के देवों में ही उत्पन्न कराना चाहिए, ऐसा उक्त चूर्णी सूत्र का अभिप्राय है। क्योंकि त्रस स्थिति के संख्यात खंड करके उनमें से बहुत खंड प्रमाण स्थावर बंधक काल में और संख्यात विभाग प्रमाण त्रस बंधक काल में नपुसक वेद का बंध पाया जाता है। यतने क्योंकि ईशान शब्द देशामर्शक है, अतः त्रस और स्थावर के बंध योग सब त्रसों में यथासंभव उत्पन्न कराना चाहिए, यह उस सूत्र का भावार्थ है। यानी जहां जहां त्रस का बंध काल अधिक बार किया उसने, ऐसा जीव लेना है। फिर शंका, ईशान स्वर्ग के देवों में नारकियों की तरह उत्कर्षण नहीं होता, वहां संकलेश भाव ज्यादा है तो उत्कर्षण होता है, तो यहाँ वैसा तो नहीं होगा क्योंकि देवों में अति तीव्र संकलेश का अभाव है, अतः ईशान में उत्पन्न नहीं कराना चाहिए, ऐसे तो इसका प्रश्न है। उसका समाधान, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि बंधक काल के लाभ की तरह उत्कर्षण के लाभ की प्रधानता नहीं है। लाभ यानी संचय, बंधक काल में जो उत्कर्ष संचय पाया जाएगा वैसे उत्कर्षण की अपेक्षा नहीं पाया जाएगा। ऊपर लाभ शब्द आया था, देखो लाभ अर्थात उत्कृष्ट संचय, ऊपर के समाधान के तीसरे लाइन में था। लाभ है ने उत्कृष्ट संचय, अर्थात उत्कृष्ट संचय के लिए बंधक काल जितना आवश्यक है उतना उत्कर्षण आवश्यक नहीं है। यानी उत्कर्षण के द्वारा उत्कृष्ट संचय नहीं होगा जितना बंधक के द्वारा होगा।
इज इट सो दैट माय ईशान के देव ज्यादातर स्थावर काय का बंध करते, इसे तो सभी
ऐसा के लिए नहीं, सभी के लिए नहीं, ये किसी एक के लिए है जो कर रहा है। अभी वहां का समय दृष्टि क्यों करेगा और वहां का हर मिथ्या दृष्टि क्यों करेगा, ख्याल में आती है ना बात, ये कहां पॉसिबल है उसको लिया है। बहुनत्रिक वाले भी करेंगे पर इनकी ईशान वाले की आयु ज्यादा लेनी थी और ईशान तक पाए जाते हैं स्थावर का बंद करने वाले, इसलिए ईशान का नाम लिया। वैसे सौधर्म की भी 2000 है और इसकी भी 2000 है, आयु में तो कोई डिफरेंस नहीं है, फिर भी ईशान वाले को लिया, अंत वाले को लिया ना, वहां तक के सभी जीव समझना। देखो विशेषार्थ पढ़ेंगे अभी इसी का, नपुसक वेद का उत्कृष्ट प्रदेश सत्व गुणित कर्मांश वाले ईशान स्वर्ग के देव के बतलाया है। इसका कारण बतलाते हुए वीरसेन स्वामी लिखते हैं कि ईशान स्वर्ग में त्रसबंधक काल और स्थावर बंधक काल दोनों होते हैं। देखो ये नाम कर्म तो बनते रहते हैं, त्रस बंधेगा या स्थावर बंधेगा, ऐसा नहीं कि आयु के अंत में बंधक की उसकी बात नहीं है। हाँ। अब उसमें भी स्थावर बंधक काल त्रस बंधक काल से संख्यात गुणा है, और इसमें स्त्री वेद और पुरुष वेद का बंध नहीं होता। जब स्थावर का बंध हो रहा है तो उसके योग्य जो पूरक प्रकृतियां उन्हीं का बंध होगा। जिस समय स्थावर का बंध हो रहा है उस समय तो नपुंसक वेद का ही बंध होगा। बात ख्याल में आती है? हाँ। इस प्रकार ईशान स्वर्ग में केवल नपुंसक वेद के बंध की अधिक काल तक संभावना होने से उसके द्रव्य का अधिक संचय हो जाता है। इसलिए नपुंसक वेद के अधिक संचय के लिए गुणित कर्मांश वाले जीव को ईशान स्वर्ग में उत्पन्न कराया है। इस पर यह शंका हुई कि सातवें नर की उत्कृष्ट आयु 33 सागर है और ईशान स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु साधिक 2 सागर है। साधिक क्यों कहा भानुबेन, पता है आपको? हाँ, घातायुष, जिसने पहले ऊपर के स्वर्गों की आयु बांधी है और बाद में परिणामों के कारण उसका आयु का घात होता है, उसको घातायुष कहते हैं। तो साधिक में कितनी होती है साधिक? हाँ, सम्यक दृष्टियों में तो 2.5 सागर हो जाती है आयु घटकर, आधा सागर ज्यादा, और मिथ्या दृष्टियों में पल्ले के असंख्यात भाग अधिक होती है, तो साधिक 2 सागर कहे उसको।
तो क्या ये ईशान स्वर्ग के ऊपर ये स्थावर का बंध ही नहीं होता है?
नहीं, ऊपर तो एकेंद्रीय संबंधी बंध ही नहीं है।
नहीं, पर एकेंद्रीय
एकेंद्रीय के स्थावर है ना, स्थावर नाम कर्म का बंध, एकेंद्रीय नाम, एकेंद्रीय स्थावर आतप, ये जो सारे है
ऊपर के स्वर्ग,
ऊपर के बंधे के ही
नहीं का बंध होगा।
हाँ, ऊपर के स्वर्गों में पंचेंद्रिय का ही बंध होगा। हो सकता है मनुष्य तिर्यंच, कहाँ तक? सहस्रार तक, सहस्रार तक, उसके ऊपर मनुष्य का। और ये जो एक देव एकेंद्रीय में जा सकते हैं, परंतु द्विंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय में नहीं जा सकते, तो उसका बंध भी नहीं करेंगे। एकेंद्रीय स्थावर आतप का तो बंध होता है, परंतु सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त का बंध नहीं होगा। कोई भी देव सूक्ष्म साधारण और अपर्याप्त, ये 3 नाम कर्म नहीं बांधेंगे।
सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त का तो बराबर है, पर यहाँ पे स्थावर का भी निषेध किया, क्योंकि ऊपर के जो देव जो
एकमात्र भवनवासी और सौधर्म ईशान, भवनवासी नहीं भवनत्रिक, हाँ। और सौधर्म ईशान, ये ही देव एकेंद्रीय संबंधी बंध करते, ऊपर के नहीं। इसलिए हमने बार बार मारणांतिक करने वालों का जो 9/14 देखा था, वो ईशान तक के जीवों का ही देखा था। ऊपर के देव उन प्रकृतियों का बंध ही नहीं करते, एकेंद्रियों में जाने वाले ईशान तक ही जाएंगे, ऊपर के नहीं। तो आयु साधिक 2 सागर है, ये 5वीं लाइन में। अब यदि इन दोनों स्थलों में, कौन सी, नरक की 33 सागर और ईशान की साधिक 2 सागर, इन दोनों स्थलों में नपुंसक वेद का बंधकाल प्राप्त किया जाता है, तो वह ईशान स्वर्ग से सातवें नरक में नियम से अधिक प्राप्त होता है, क्योंकि ऐसा नियम है, पुरुष वेद का बंधकाल सबसे थोड़ा है, इससे स्त्री वेद का बंधकाल संख्यात गुणा है। ये पहले हमने देखा भी था इसको, और इससे नपुंसक वेद का बंधकाल संख्यात गुणा है। इस नियम के अनुसार 33 सागर के संख्यात खंड करने पर उनमें से बहुभाग खंड नपुंसक वेद के बंधकाल के प्राप्त होते हैं, ये शंका चल रही है। तथा ईशान स्वर्ग में नपुंसक वेद का उत्कृष्ट बंधकाल अपना संख्यात वा भाग कम 2 सागर प्राप्त होता है, सो भी यह इतना अधिक काल तब प्राप्त होता है जब ईशान स्वर्ग में त्रस बंधकाल से स्थावर बंधकाल संख्यात गुणा स्वीकार कर लिया जाता है। यानी कोई जीव करेगा तो ही की बात है ना, हर एक जीव के लिए नहीं है। तो भी सातवें नरक में नपुंसक वेद के बंधकाल से ईशान स्वर्ग में नपुंसक वेद का बंधकाल बहुत थोड़ा प्राप्त होता है, इसलिए नपुंसक वेद का उत्कृष्ट संचय सातवें नरक में बतलाना चाहिए, ये शंका है पूरी। इस पर शंका हुई लिखा है ना ऊपर से 4th लाइन में, इस पर शंका हुई कि वहां अगर इन्वर्टेड डालना है तो बतलाना चाहिए तक, ये पूरी शंका इतनी दस बारह लाइन की है। वीरसेन स्वामी ने इस शंका का दो प्रकार से समाधान किया है। एक तो यह है कि संपूर्ण त्रस्त स्थिति को बहुत संकलेश से युक्त नारकियों में व्यतीत कराया जाए, और जब उस स्थिति में ईशान स्वर्ग के देव की आयु प्रमाण काल शेष रहे तब उसे ईशान स्वर्ग में उत्पन्न कराया जाए तो इससे नपुंसक वेद का अधिक संचय संभव है। क्या कहना चाहते हैं? नरक में है ना अधिक, तो हाँ है, तो जिसने नरक में अधिक संकलेश करके नपुंसक वेद का बहुत बार बंद किया है ऐसा ही जीव अभी ईशान में जाने वाला है, और वहाँ भी उसने स्थावर का बंद काल में नपुंसक वेद का और अधिक बंद किया है, तो ये तो इष्ट अपने लिए तो पुष्टि से ही होती है क्योंकि नरक में उसने ज़्यादा काल बिताया है तो अधिक बार नपुंसक वेद का भी बंद किया है, और ऐसा ही जीव ईशान में आया है और वहाँ भी उसने नपुंसक वेद का अधिक बंद किया है। पर मालूम होता है कि वीरसेन स्वामी को इस उत्तर पर स्वयं संतोष नहीं हुआ। उसका कारण यह है कि पूर्व में मिलान करते हुए जो ईशान स्वर्ग से सातवें नरक में नपुंसक वेद का अधिक बंद काल बतलाया है सो यह 33 सागर से साधिक दो सागर का मिलान करके प्राप्त किया गया है। अब यदि दोनों स्थलों पर समान काल के भीतर नपुंसक वेद का बंद काल प्राप्त किया जाए तो वह सातवें नरक से ईशान स्वर्ग में बहुत अधिक प्राप्त होता है। समान काल में अगर उन दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो सातवें नरक से ईशान में ज्यादा है, क्योंकि सातवें नरक में केवल त्रस बंध काल है, स्थावर बंध काल नहीं है, और ईशान स्वर्ग में स्थावर बंध काल भी है जिससे यहाँ नपुंसक वेद का बंध काल अधिक प्राप्त हो जाता है। क्या कहना चाहते हैं? ईशान स्वर्ग में एकेंद्रिय संबंधी भी बंद होगा, एकेंद्रिय संबंधी ने स्थावर संबंधी भी होगा और त्रस संबंधी भी होगा। त्रस तो संगी पंचेंद्रिय का ही होगा, द्विंद्रिय तीन्द्रिय का तो नहीं होगा, परंतु जो पंचेंद्रिय का बंद कर रहा है उसमें भी कोई पुरुष वेद का करेगा, स्त्री वेद का और नपुंसक वेद का भी करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, तो उसमें त्रस बंध काल में भी नपुंसक वेद का बंद हो रहा है और स्थावर बंध काल में तो हो ही रहा है अकेले नपुंसक वेद का, तो उसका प्रमाण अधिक बढ़ जाता है। ख्याल में है ना बात? त्रस बंद काल। हाँ, ज्यादा होता है। हाँ, वहाँ उदय भी है ना नपुंसक वेद का नारकी को?
नहीं, वो तो नारकी की बात हो गई, पर अभी जो ग्रेविक में जो जीव नपुंसक वेद के साथ पुरुष में अरे मनुष्य में उत्पन्न होने वाला
है, कहाँ से?
ग्रेविक से।
ग्रेविक से कोई कैसे आएगा?
नहीं नहीं, ग्रेविक में भी मिथ्या दृष्टि होता है।
हाँ, मिथ्या दृष्टि है,
उसको भी नपुंसक वेद का बंद हो सकता है। हाँ, अभी उनके हिसाब से जो काल का जो डिफरेंस है नपुंसक वेद का काल ज्यादा बन सकता है, तो वहाँ पे भी ये लॉजिक अप्लाई हो सकता है ना, क्योंकि वहाँ पे भी ये पुरुष वेद का काल छोटा वे छोटा है, उससे स्त्री वेद का बड़ा है, उससे नपुंसक वेद का बड़ा है। अभी 31 सागर तक जो यहाँ से संचित करके ऊपर ग्रेविक में उत्पन्न हुआ है,
ग्रेविक में जाने वाला जो है
वो भी नपुंसक वेद का बंद तो करेगा स्थावर का,
परंतु गुणित कर्मोश वाला जो जाएगा तो वो जाने में भी स्थावर का बंद तो वहाँ होता
है, शुक्ल लिखा हो जाता है,
वो होगा ही नहीं वहाँ पर। यानी इन सब बातों का विचार करके बता रहे ना। अभी आगे पढ़ेंगे। वीरसेन स्वामी ने पहले उत्तर में इस दोष का अनुभव किया और तब वे अथवा करके दूसरा उत्तर देते हैं। उसका भाव यह है कि त्रसत स्थिति साधिक 2000 सागर काल के भीतर गुणित कर्मांश वाले इस एकेंद्रीय जीव को त्रसों में उत्पन्न कराते हुए ईशान स्वर्ग के देवों में बहुत बार उत्पन्न करावे। इससे नपुसक वेद का बंधकाल अधिक प्राप्त हो जाने से उसका संचय भी अधिक प्राप्त होगा। इस पर यह शंका हो सकती है, क्या यह संभव है कि यह जीव सदा ईशान स्वर्ग के देवों में उत्पन्न होता रहे? अतः इस शंका को ध्यान में रखकर वीरसेन स्वामी आगे लिखते हैं, सूत्र में जो ईशान शब्द आया है सो वह देशामर्शक है। उसका भाव यह है, इस जीव को त्रस और स्थावर के बंधे योग्य यथासंभव सब त्रसों में उत्पन्न कराया जाए। स्थावर का बंध करने वाले जो जो त्रस है उसमें वो अधिक बार उत्पन्न करावे, ऐसा उनका कहना है। उसमें इतना ध्यान अवश्य रखे, अधिक से अधिक जितनी बार ईशान स्वर्ग के देवों में उत्पन्न कराया जा सके कराया जाए। इतने के बाद भी यह शंका की गई, माना कि ईशान स्वर्ग में नपुसक वेद का बंधकाल अधिक है, पर वहाँ अधिक संक्लेश परिणाम संभव न होने से नरक के समान अधिक उत्कर्षण नहीं हो सकता, अतः नपुसक वेद के संचय के लिए नरक में ही उत्पन्न कराना ठीक है। इस शंका का वीरसेन स्वामी ने जो समाधान किया है उसका भाव यह है, उत्कर्षण से जितना संचय होगा उससे बंध की अपेक्षा होने वाला संचय ज्यादा लाभ करे, यानी अधिक संचय होगा। अतः ऐसे जीव को अधिकतर ईशान स्वर्ग के देवों में ही उत्पन्न कराना चाहिए। यहाँ पर प्रकरणवश एक करण गाथांश उद्धृत किया गया है जो पूरी इस प्रकार है। वहाँ क्या लिखा था ना, प्रक्षेपक संक्षेपण, ऐसा शंकाकार ने बताया था 92 पृष्ठ पर सेकंड लाइन में, तो वो पूरी गाथा क्या है वो यहाँ बता रहे हैं, विशेषार्थ में बता रहे हैं उसको। प्रक्षेपक चाहिए, प्रपेक्षक हुआ है, प्रक्षेपक। प्रक्षेपक संक्षेपेण विभक्ते यद्धनं समुपलब्धं प्रक्षेपास्तेन गुणा प्रक्षेप समानि खंडानि। ये पूरी उसकी करण गाथा बताई। इसलिए नपुसक वेद का उत्कृष्ट प्रदेश संचय ईशान स्वर्ग में उत्पन्न होने वाले गुणित कर्मांश जीव के देव पर्याय के अंतिम समय में बतलाया है, क्योंकि ईशान स्वर्ग का देव मरकर एकेंद्रीय हो जाता है, अतः वहां स्थावर प्रकृतियों का बंधकाल संभव है और स्थावर प्रकृतियों के बंध के समय केवल नपुसक वेद का ही बंध होता है, क्योंकि स्थावर नपुसक ही होते हैं। अतः ईशान स्वर्ग के देव के अंतिम समय में उत्कृष्ट संचय संभव है। सातवें नरक की स्थिति यद्यपि 33 सागर है, किंतु वहां स्थावर पर्याय का बंधकाल नहीं है, क्योंकि सातवें नरक से निकलकर जीव संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक तिर्यंच ही होता है। ये तो नियम है। अतः गुणित कर्मांश जीव के सातवें नरक के अंत में नपुसक वेद का उत्कृष्ट संचय नहीं बतलाया, अथवा करके आगे जो भावार्थ बतलाया है वह स्पष्ट ही है। तो तथा यद्यपि सातवें नरक में अति तीव्र संक्लेश परिणाम होने से उत्कर्षण अर्थात स्थिति और अनुभाग में वृद्धि होने की अधिक संभावना है, किंतु किसी प्रकृति के उत्कृष्ट द्रव्य संचय के लिए उत्कर्षण की अपेक्षा उस प्रकृति का बंद होना अधिक लाभकारी है, क्योंकि बंद होने से अधिक प्रदेशों का संचय होता है। ये तो पहले भी बता चुके हैं। अब यहाँ नपुसक वेद के उत्कृष्ट द्रव्य के उपसंहार का कथन करने पर संचयानुगम, भागहार प्रमाणानुगम और लब्ध प्रमाणानुगम ये तीन अनुयोग द्वार होते हैं। क्या संचय अनुगम, भागहार प्रमाणानुगम और लब्ध प्रमाणानुगम, उनमें से संचयानुगम को कहते हैं। वह इस प्रकार है, कर्म स्थिति के प्रथम समय से लेकर अंतर्मूर्त काल पर्यंत बंध को प्राप्त नपुसक वेद का द्रव्य है। उसके बाद अंतर्मूर्त काल में नपुसक वेद का संचित होने वाला द्रव्य नहीं है, अर्थात उस अंतर्मूर्त में नपुसक वेद का संचय नहीं होता, क्योंकि उसमें अविवक्षित स्त्रीवेद और पुरुष वेद का बंध होने से नपुसक वेद के बंध का अभाव है। क्या कहते हैं, तीनों वेद में से कोई ना कोई बनता है, तो पहले अंतर्मूर्त में नपुसक वेद का बंध हुआ।
ये कर्म स्थिति के प्रथम समय से लेकर, तो वो प्रथम समय कौन सा लेना है?
कोई भी एट सम गिवन पॉइंट, जैसे हमने कैसे देखा था मिथ्यात्व के बारे में, कर्म स्थिति के में से इतने इतना काल उसने एक इंद्रिय में गमाया, तो वहां 70 कोड़ा कोड़ी लिया। अब यहाँ नपुसक वेद की जो कर्म स्थिति उसने लेना, तो एक अंतर्मूर्त नपुसक वेद का बंध किया तो उसका संचय भी हुआ, फिर स्त्रीवेद और पुरुष वेद का बंध हुआ, उससे ऊपर के अंतर्मूर्त काल में भी नपुसक वेद का संचय होता है, क्योंकि उसमें नपुसक वेद का बंध पाया जाता है। उसके ऊपर अंतर्मूर्त काल में नपुसक वेद का संचय नहीं होता, क्योंकि उसमें नपुसक वेद के प्रतिपक्षी स्त्रीवेद और पुरुषवेद का बंध संभव है। इसी प्रकार कर्म स्थिति के अंतिम समय पर्यंत ले जाना चाहिए, किंतु इतना विशेष है, इस कर्म स्थिति काल के अंदर प्रतिपक्ष प्रकृतियों के बंध का काल और उनके बंध के बदलने के बार सबसे थोड़े करने चाहिए, अन्यथा नपुसक वेद का उत्कृष्ट संचय नहीं बन सकता। ख्याल में आई बात, नपुसक वेद का बंध काल बारंबार अधिक बार आना चाहिए और उसका काल भी बहुत बड़ा होना चाहिए। शंका, निरंतर बंधने वाले कषायों के द्रव्य का नपुसक वेद में निरंतर संक्रमण होने पर नपुसक वेद का संचय कर्म स्थिति काल प्रमाण क्यों नहीं पाया जाता? प्रश्न ख्याल में आया, इसका संक्रमण कराओ ना, इसमें वेद में संक्रमण होने पर क्या उसका अधिक नहीं कर्म स्थिति प्रमाण पाया जाता? समाधान नहीं, क्योंकि नपुसक वेद का बंध रुक जाने पर अंतर्मूर्त काल तक कषायों में से नपुसक वेद में कर्म प्रदेशों का आगमन नहीं होता। हमने देखा था ये संक्रमण में भी बंध की अपेक्षा होती है, जिस काल में नपुसक वेद का बंध हो रहा है उसी में काल में कषाय है वो इसमें परिवर्तित हो। यह किस प्रमाण से जाना? समाधान, बंध के समय उत्कर्षण होता है, इस सूत्र से जाना। शंका, बंध के न होने पर यदि उत्कर्षण नहीं होता तो न होवे, संक्रमण तो होना चाहिए क्योंकि उसका निषेध नहीं है। तो कहते बंध के अभाव में संक्रम भी नहीं होता, क्योंकि बंध का अभाव होने से अपतद ग्रह प्रकृति में संक्रमण नहीं होता। ये पहले बात आई ना, अपतद ग्रह यानी जिसमें संक्रमित होना है वो बंध वाली हो तो उसमें संक्रमण होगा, और जो बंधने वाली नहीं है उसमें संक्रमण नहीं होगा। तो बंध का अभाव होने से अपतद ग्रह प्रकृति में संक्रमण नहीं होता, इस प्रकार सूत्र के अविरुद्ध आचार्य वचन है। दूसरे, यहाँ बंधने वाले द्रव्य की प्रधानता है, संक्रमित द्रव्य की नहीं, क्योंकि संक्रमित द्रव्य में आय के अनुसार व्यय देखा जाता है, यानी संक्रमण इसमें आता है तो इसमें से चला भी जाता है। फिर शंका, यदि बध्यमान प्रकृति ही पतत ग्रह है तो मिथ्यात्व के द्रव्य को सम्यक तो प्रकृति नहीं ग्रहण कर सकती, क्योंकि उसका बंध नहीं होता। ये क्या करना, अभी कहां से कहां चला गया? पतत ग्रह ने जिसमें वो संक्रमित होना है, बंधने वाली ही अगर पतत ग्रह कहेंगे तो सम्यक प्रकृति का बंध ही नहीं होता, तो उसमें संक्रमण कैसे होगा? समाधान, यह दोष ठीक नहीं है, क्योंकि यह लक्षण बंध प्रकृतियों की अपेक्षा ही लागू होता है। सम्यक प्रकृति तो बंधने वाली प्रकृति है ही नहीं, परंतु जो बंधने वाली अन्य प्रकृतियां हैं उनमें ये लक्षण लागू होगा। जो लक्षण अन्यत्र लागू होता है वह उससे भिन्न स्थल में लागू नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होने में विरोध आता है। इस प्रकार संचय अनुगम समाप्त हुआ।
पे पुरुष वेद और स्त्री वेद का मैक्सिमम कहाँ पे होता है वो नहीं बताया ना?
क्या
पुरुष वेद का द्रव्य मैक्सिमम कहाँ पे होता है?
वो तो आगे आएगा, अभी तो हम नपुंसक वेद की बात देख रहे हैं। अभी हमारा अनुगम नहीं पूरा हुआ। नपुंसक वेद के उत्कृष्ट द्रव्य में तीन बातें बताएंगे, संचय अनुगम, भागार अच्छा। प्रमाण और लब्ध प्रमाण। उनमें से संचय अनुगम हुआ अपना। अब भागार के प्रमाण का अनुगम जो है, दो नंबर इसको, ये यहाँ से आए ना, पृष्ठ संख्या 94 से। ये नपुंसक वेद में चल रहा है, उसके बाद अभी स्त्री वेद पुरुष वेद की बात उठाई नहीं उन्होंने, वो कौन सा जीव होता है वो बाद में बताएंगे। अब भागार के प्रमाण का अनुगम करते वह इस प्रकार है, कर्म स्थिति के प्रथम समय में जो द्रव्य बांधा उसका भागार अंगुल का असंख्यात भाग है। दूसरे समय में जो द्रव्य बांधा उसका भागार पूर्व भाग के आधे से कुछ कम है।
कि कर्म स्थिति के प्रथम समय में जो द्रव्य बांधा उसका भागार, वहाँ भागार किस
भागार ने उसकी संख्या निकालने के लिए जो भागार है उसको भागार कहेंगे। क्या कहते हैं देखो, प्रथम समय में जो द्रव्य बांधा उसका भागार का अर्थ होता है जिस संख्या से भाग देने पर हमें वो मिलेगा, नपुंसक वेद का प्रमाण। हाँ, कर्म स्थिति के पहले समय में बंधे हुए थोड़े परमाणु हैं, दूसरे समय में बंधे हुए ज्यादा है, तीसरे समय में बंधे हुए और ज्यादा है, तो भागार बढ़ेगा कि कम होगा?
भागार, अरे भागार बढ़ता है तो द्रव्य कम होता जाएगा,
तो यहाँ द्रव्य ज्यादा लेना चाहिए अभी, क्योंकि जो पूर्व में अधिक पहले बंधा है उसके परमाणु थोड़े होंगे, तो पहले समय में बंधने हुए का भागार बड़ा होगा। दूसरे समय में बंधे हुए अभी कितने पड़े हैं सत्ता में, उसका भागार छोटा होगा, क्योंकि द्रव्य उसका ज्यादा है। वही बात है, देखो पहले समय में जो भागार कहा, जो द्रव्य दूसरे समय में बांधा उसका भागार पूर्व भागार के आधे से कुछ कम है। इस प्रकार नपुंसक वेद के बंधक काल के अंतिम समय पर्यंत तीसरे आदि समयों में बंधने वाले द्रव्य का भागार पूर्व भागार से कुछ कम तिहाई, कुछ कम चौथाई आदि क्रम से जानना चाहिए। हाँ, उससे थोड़ा कम थोड़ा कम। नपुंसक वेद के बंधक काल के अंतिम समय में भागार का प्रमाण अंगुल के असंख्यात वे भाग में नपुंसक वेद के बंधकाल का भाग देने से जो लब्ध आवे उससे कुछ अधिक है,
कुछ कम है, कम है,
उससे कुछ, सॉरी, कुछ से कुछ कम है, बराबर है, कम ही कहना था मुझे, क्योंकि अभी देखो ऊपर क्या देखा था, दूसरे समय में बांधा आधे से कुछ कम है, तीसरे समय में बांधा
वन थर्ड
से कुछ कम है,
वन फोर्थ से कुछ कम
है, वैसे ही अंतिम समय में बांधा तो जो उतने समयों का अंतर्मुहूर्त का प्रमाण है
उससे कुछ कम है।
ये वन थर्ड का ना है, एक से तीन का भाग दिया तो वहाँ जो था बंधक काल उसका भाग देना और उससे कुछ कम है, नहीं समझे? तीसरे समय का भागार कितना था? वन थर्ड से कुछ कम। तीसरा समय तो तीन से भाग दिया। अब यहाँ बंधक काल जितना होगा अंतर्मुहूर्त उसके प्रमाण से अगर हम भाग देंगे
जितने भी समय है उससे,
हाँ, उससे थोड़ा कम। पुनः स्त्रीवेद और पुरुषवेद के बंधक काल को बिताकर उससे ऊपर के प्रथम ऊपर के समय में बंधने वाले नपुसक वेद के द्रव्य का भागार अंगुल के असंख्यात वे भाग में तीनों वेदों के काल का भाग देने पर जो लब्धा आवे उससे कुछ कम होता है। ये बात ख्याल में आई ना? अभी पहले समय से शुरू किया था, जितना काल जाएगा उतने समय जो नंबर ऑफ समय है उससे भाग देना है और उससे कुछ कम इतना लेना है। अब पहले नपुसक वेद का बंध काल बीत गया, फिर स्त्री वेद का और पुरुष वेद का, तीनों का मिलकर जो अंतर्मुहूर्त है उससे भाग देना और उससे कुछ कम देना। इससे ऊपर नपुसक वेद के अंतर्मुहूर्त काल प्रमाण द्वितीय बंधक काल के अंतिम समय पर्यंत अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण भागार का भागार रूपाधिक क्रम से बढ़ता जाता है। रूपाधिक यानी एक एक अधिक, एक एक से बढ़ता है, क्योंकि एक समय बीत गया, दो समय बीत गया, तीस समय, तो उसका भागार का भागार। इसके बाद पुनः स्त्रीवेद और पुरुषवेद पुरुष बराबर करना। पुरुषवेद के बंध काल को बिताकर उससे ऊपर के समय में बंधने वाले नपुसक वेद का द्रव्य का भागार अंगुल के असंख्यात वे भाग में द्विगुणित तीनों वेदों के बंध काल का भाग देने से जो लब्धा आवे उससे कुछ कम होता है। इस प्रकार भागार को जानकर ईशान स्वर्ग के देव की आयु के अंतिम समय पर्यंत ले जाना चाहिए। जितनी आयु होगी उसके अभी समय करो और उससे भागार दो। अब समय प्रबद्धों के प्रमाण का अनुगम करते हैं। पहले भागार का प्रमाण बताया, भागार का प्रमाण कैसे निकालना उसको बताया, अब समय प्रबद्धों के प्रमाण का अनुगम करते हैं। पहले हमने देखा ना संचय अनुगम, देखा भागार प्रमाण अनुगम, देखा
अभी लब्ध प्रमाण
अनुगम। लब्ध प्रमाण अनुगम उसके यहाँ समय प्रबद्धों के प्रमाण का अनुगम कहा। अब समय प्रबद्धों के प्रमाण का अनुगम करते हैं, वह इस प्रकार है। कर्म स्थिति काल के अंदर त्रस और स्थावर प्रकृतियों के बंधक कालों में यदि तीनों वेदों के समय प्रबद्ध डेढ़ गुणहानी प्रमाण माए जाते हैं तो स्थावर बंधक काल में कितने समय प्रबद्ध प्राप्त होते हैं, इस प्रकार त्रैराशिक करके फल राशि से इच्छा राशि को गुणा करके उसमें प्रमाण राशि का भाग देने से डेढ़ गुणहानि के संख्यात खंड करके उनमें से बहुखंड प्रमाण समय प्रबद्ध प्राप्त होते हैं, क्योंकि त्रस बंधक काल की अपेक्षा स्थावर बंधक काल संख्यात गुणा है। ये सब समय प्रबद्ध नपुसक वेद के ही होते हैं, क्योंकि स्थावर बंधक काल में त्रिवेद और पुरुष वेद के बंध का अभाव है। यानी वहां जो वेद में जितना दिया जाता है उसको वेद का समय प्रबद्ध कहा, वो सारा का सारा नपुसक वेद में आता है। इस द्रव्य को पृथक स्थापित करके पुनः डेढ़ गुणानी प्रमाण समय प्रबुद्धों में, यह स्थावर बंध काल में तो अकेला नपुसक वेद का बंध है, तो ये तो समय प्रबुद्ध निकाले ही अलग। अब कहते हैं पुनः, देखो इस द्रव्य को पृथक स्थापित करके पुनः डेढ़ गुणानी प्रमाण समय प्रबद्धों में त्रसस्थावर बंधक काल से भाग देकर जो लब्ध आए उसे त्रस बंधक काल से गुणा करने पर कर्म स्थिति काल के अंदर जो त्रस बंधक काल है उसमें संचित हुए तीनों वेदों का द्रव्य होता है। यही बात है, जो स्थावर बंधक काल है उसमें तो जो कोई समय प्रबद्ध आए हैं वो सारे नपुसक वेद के आए।
यहाँ पे तीनों वेद,
अब जो त्रस बंधक काल में जो समय प्रबद्ध आए हैं उनमें तो तीनों वेदों के हैं, यही बात बताना चाहते हैं। त्रस बंधक काल के अंदर पुरुष वेद का बंधक काल सबसे थोड़ा है। अभी त्रस बंधक काल में भी स्थावर बंधक काल का तो पूरा का पूरा माल नपुसक वेद को मिला, त्रस बंधक काल में भी पुरुष वेद का बंधक काल छोटा, फिर स्त्री वेद का, फिर नपुसक वेद का बड़ा। तो त्रस काल बंधक काल के अंदर पुरुष वेद का बंधक काल सबसे थोड़ा, स्त्री वेद का बंधक काल उससे संख्यात गुणा, और नपुसक वेद का बंधक काल उससे संख्यात गुणा। यदि कर्म स्थिति काल के अभ्यंतरवर्ती त्रस बंधक काल में इन तीनों वेदों के कालों में संचित हुए समय प्रबद्ध डेढ़ गुणहानी के संख्यात वे भाग मात्र पाए जाते हैं, तो नपुसक वेद के बंधक काल में संचित हुए समय प्रबद्ध कितने प्राप्त होते हैं? इस प्रकार त्रैराशिक करके फल राशि से इच्छा राशि को गुणा करके प्रमाण राशि में उसके भाग देने पर डेढ़ गुणहानी प्रमाण समय प्रबद्धों के संख्यात वे भाग के संख्यात खंड करके उनमें से बहुत खंड प्रमाण समय प्रबद्ध कर्म स्थिति काल के अभ्यंतरवर्ती त्रस बंधक काल में नपुसक वेद के होते हैं। इन समय प्रबद्धों को पूर्वोक्त स्थावर बंधक काल में संचित हुए समय प्रबद्धों में मिला देने पर कर्म स्थिति काल के अंदर नपुसक वेद का संचित द्रव्य होता है। अकेले स्थावर बंधक काल में जितना पाया वो
प्लस
त्रस बंधक काल में मैक्सिमम नपुसक वेद का है, उसको भी उसी में ऐड करना। ऐसा होते हुए भी यह द्रव्य डेढ़ गुणहानी प्रमाण समय प्रबद्धों के संख्यात खंड करने पर उनमें से बहुखंड प्रमाण होता है। उसका फाइनल रिजल्ट क्या है? डेढ़ गुणहानि गुणित समय प्रबद्धों के संख्यात बहुभाग। विशेषार्थ, कर्म स्थिति के प्रथम समय से लेकर अंतिम समय पर्यंत कर्म स्थिति काल में बंधने वाले समय प्रबद्धों के प्रमाण की परीक्षा करने को उपसंहार कहते हैं। नपुसक वेद का उत्कृष्ट द्रव्य गुणित कर्मांश वाले जीव के बतलाया है, और गुणित कर्मांश होने के पहले जो विधि बतलाई है उससे गुणित कर्मांश वाले जीव को कर्म स्थिति काल तक पहले स्थावरों में और पीछे त्रसों में भ्रमण कराया है, जो हमने अन्यत्र भी देखा था। इस कर्म स्थिति काल में भ्रमण करता हुआ जीव कभी स्थावर पर्याय के योग्य कर्मों का बंध करता है और कभी त्रस पर्याय के योग्य कर्मों का बंध करता है। किंतु त्रस बंधक काल से स्थावर बंधक काल संख्यात गुणा है। हाँ, अभी ये फिर विशेषार्थ में ले रहे हैं। जब जब स्थावर पर्याय के योग्य कर्मों का बंध करता है तब तब तीनों वेदों में से नपुसक वेद का ही बंध करता है, क्योंकि सब स्थावर नपुसक ही होते हैं। तथा जब त्रस पर्याय के योग्य प्रकृतियों का बंध करता है तब तीनों में से किसी भी वेद का बंध करता है, क्योंकि त्रसों में तीनों वेदों का उदय पाया जाता है। इस प्रकार त्रस बंधक काल में यद्यपि तीनों वेदों का बंध संभव है तथापि उसमें नपुसक वेद का बंधकाल शेष दोनों वेदों के बंधकाल से संख्यात गुना है। ऐसी स्थिति में इन दोनों कालों में नपुसक वेद के संचित हुए समय प्रबद्धों का प्रमाण कितना है, यह इस प्रकरण में बतलाया गया है, जिसका खुलासा इस प्रकार है। कर्मस्थिति काल के अंदर तीनों वेदों के संचित द्रव्य का प्रमाण डेढ़ गुना नहीं मात्र है। किसी भी कर्म का संचय कितना होता है तो डेढ़ गुना, समय प्रबद्ध मल्टीप्लाइड बाय डेढ़ गुना नहीं। यहाँ डेढ़ गुणहानि से डेढ़ गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध लेना चाहिए, लिखा है न, डेढ़ गुणहानि बता दिया, परंतु ये पूरा इतना समझना चाहिए। और वह काल त्रस बंधक और स्थावर बंधक दोनों का है, अतः कर्मस्थिति काल का भाग डेढ़ गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध में देकर जो लब्ध आए उसे स्थावर बंधक काल से गुणा करने पर स्थावर बंधक काल में संचित वेद के द्रव्य का प्रमाण होता है। यानी वो हमने एक समय का कितना और इतने कितना उसके त्रैराशिक करके निकाला। यह सब केवल नपुसक वेद का ही है, क्योंकि स्थावर बंधक काल हमने देखा है। नहीं समझे, देखो क्या कहते हैं, पूरा द्रव्य कितना है, डेढ़ गुणहानि से गुणित समय प्रबद्ध। अब ये जो डेढ़ गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध है, इसमें त्रस बंधक काल भी था और स्थावर बंधक काल भी था। इतने समय प्रबद्ध जो आए हैं, कर्मस्थिति प्रमाण काल में इतना संचित हुआ द्रव्य है। ये कर्मस्थिति प्रमाण जो काल है उसमें त्रस का भी बंध बहुत बार किया, स्थावर का भी किया है, तो उसमें स्थावर बंध का काल बड़ा है। तो दोनों त्रस बंधक काल प्लस स्थावर बंधक काल इज इक्वल टू कर्मस्थिति काल, क्योंकि कर्मस्थिति में ही इतना बंध कर रहे हैं। तो पहले में पहले डेढ़ गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध है, उसको कर्मस्थिति से भाग दिया, यानी दोनों के काल मिलाकर भाग दिया, त्रस का काल और स्थावर का काल मिलाकर उससे भाग दिया। जितना आया उसको स्थावर बंध काल से गुणा करेंगे तो उसका समय प्रबद्ध मिलेगा, और त्रस बंधक काल से गुणा करेंगे तो तीनों वेदों का समय प्रबद्ध मिलेगा। यह सब देखो, फिर पढ़ती हूँ। यहाँ डेढ़ गुणहानि से डेढ़ गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध लेना चाहिए, ऊपर से पांचवी लाइन। वह काल ने पूरा कर्म स्थिति का काल, त्रस बंधक और स्थावर बंधक दोनों का है, अतः कर्मस्थिति काल का भाग डेढ़ गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध में देकर जो लब्ध आए उसे स्थावर बंधक काल से गुणा करने पर स्थावर बंधक काल में संचित वेद के द्रव्य का प्रमाण प्राप्त होता है। यहाँ तक बात ख्याल में आई? दोनों के मिले हुए काल से भाग दिया और एक के काल से गुणा किया, यह सब केवल नपुसक वेद का ही है। अब रहा त्रस बंधक काल में संचित वेदों का द्रव्य, चूंकि वह द्रव्य तीनों वेदों का है, त्रस में तो तीनों वेदों का बंध होता है, अतः उसमें से काल प्रतिभाग के अनुसार, यानी जिसका काल बड़ा है उसका द्रव्य भी ज्यादा होगा, नपुसक वेद का द्रव्य निकाल लेना चाहिए। उस द्रव्य को स्थावर बंधक काल के द्रव्य में मिला देने से नपुसक वेद का संचित द्रव्य होता है। यहाँ पर यह शंका होती है कि त्रस बंधक काल में से नपुसक वेद के द्रव्य के संचय के लिए केवल नपुसक वेद बंधक काल ही क्यों लिया है, स्त्रीवेद और पुरुष वेद का बंधक काल भी ले लेना चाहिए, जिससे नपुसक वेद के संचय के लिए पूरा कर्मस्थिति प्रमाण काल प्राप्त हो जाए, क्योंकि पुरुष वेद और स्त्रीवेद बंध काल के भीतर भी संक्रमण द्वारा नपुसक वेद का संचय संभव है, ये शंका हुए। इस पर यह शंका होती है कि लिखा ना, ये पूरी शंका है। इस पर वीरसेन स्वामी ने यह समाधान किया है, जब नपुसक वेद का बंध रुक जाता है तब स्त्री वेद और पुरुष वेद के बंध काल में कषायों का द्रव्य नपुसक वेद रूप से संक्रमित नहीं होता है। इसकी पुष्टि में प्रमाण रूप से वीरसेन स्वामी ने बंदे उक्कडदी यह गाथांश प्रस्तुत किया है। इसका भाव यह है, बंद के समय ही उत्कर्षण होता है। यद्यपि यहाँ प्रकरण संक्रमण का है, उत्कर्षण का नहीं, तब भी संक्रमण चार प्रकार का है, प्रकृति संक्रमण, स्थिति संक्रमण, अनुभाग संक्रमण और प्रदेश संक्रमण। इनमें से स्थिति संक्रमण और अनुभाग संक्रमण के ही अपर नाम उत्कर्षण और अपकर्षण है। उसी के स्थिति का संक्रमण होना या अनुभाग का संक्रमण होना, स्थिति का संक्रमण यानी स्थिति पलट जाना, अधिक होने या कम होना, कम होगी तो अपकर्षण कहेंगे, अधिक होगी तो उत्कर्षण कहेंगे। अनुभाग में भी कम होगी तो अपकर्षण कहेंगे, अधिक हो जाएगा तो उत्कर्षण कहेंगे। तो उन संक्रमण का ही नाम उत्कर्षण और अपकर्षण है। संभवतः इस पर से वीरसेन स्वामी ने यह निष्कर्ष निकाला, उत्कर्षण के लिए जो नियम है वही प्रकृति संक्रमण और प्रदेश संक्रमण के लिए भी नियम है। अतः बंदे उक्कडदि यह गाथांश देशामर्शक होने से इस द्वारा प्रकृति और प्रदेश संक्रमण का भी समर्थन हो जाता है। इस पर यह शंका हुई, संक्रमण के लिए यह कोई एकांतिक नियम नहीं है कि बंद के समय ही उसमें अन्य सजातीय प्रकृति का संक्रमण हो। शंकाकार ने पूछा था ना, सम्यक प्रकृति में कैसा संक्रमण हुआ, क्योंकि बंध के अतिरिक्त समय में भी उसमें अन्य सजातीय प्रकृति का संक्रमण देखा जाता है। यथा नपुसक वेद का बंध पहले गुणस्थान में होता है, तब भी जो जीव नपुसक वेद के उदय से शपक श्रेणी पर चढ़ता है उसके वहां नपुसक वेद में स्त्री वेद का संक्रमण होता है, क्योंकि बंध तो उसका पुरुष वेद का चल रहा है। इस शंका का वीरसेन स्वामी ने जो समाधान किया है उसका भाव यह है कि संसारी जीवों के आम व्यवस्था यह है कि उत्कर्षण के समान बंध के अभाव में संक्रमण भी नहीं होता। संसारी जीवों के अनेक वो क्षपणा वाले को छोड़कर, क्योंकि संक्रमण के कारणभूत संक्लिष्ट परिणामों से जो संक्रमण होता है वह बंधने वाली प्रकृति में ही अन्य सजातीय प्रकृति का होता है। संक्रमण के कारणभूत परिणाम, तो संक्रमण के कारणभूत जो संक्लिष्ट परिणामों से जो संक्रमण होगा, कि जिस संक्लिष्ट परिणामों से बंध हो रहा है उसी संक्लिष्ट परिणाम से अन्य प्रकृति उस रूप हो रही है। तो संक्रमण के कारणभूत संक्लिष्ट परिणामों से जो संक्रमण होता है वह बंधने वाली प्रकृति में ही अन्य सजातीय प्रकृति का होता है, उसमें ही बदलकर पड़ने वाले अन्य प्रकृति परमाणुओं को ग्रहण करने की योग्यता पाई जाती है। दूसरे, यहाँ संक्रमित होने वाले द्रव्य की प्रधानता नहीं है किंतु बंधने वाले द्रव्य की प्रधानता है। यहाँ संक्रमित द्रव्य की प्रधानता इसलिए नहीं है क्योंकि इसका आय और व्यय समान है।
ये संक्रमित द्रव्य की व्यय मीन्स
व्यय ने उसमें से अन्य में जाने वाला द्रव्य,
संक्रमित द्रव्य में आय तो बराबर है, जब भी बंद होता है तभी आय होती है।
हाँ, तो दूसरे का बंद होगा तो वही वो दूसरे रूप फिर हो जाएगा ना। जब पुरुष वेद का बंद हो रहा है तब नपुसक वेद के परमाणु उसमें संक्रमित हो जाए। संक्रमण की अगर अपेक्षा लेते हैं तो नपुसक वेद के बंद काल में स्त्री पुरुष वेद के परमाणु नपुसक वेद रूप से हो रहे, या कषाय के परमाणु नपुसक वेद से हो रहे, अब पुरुष वेद के बंद काल में उस रूप हो जाएंगे। इससे स्पष्ट है कि त्रसस्थ स्थिति में स्त्री वेद और पुरुष वेद के बंधक काल को छोड़कर अन्यत्र ही नपुसक वेद के द्रव्य का संचय होता है। ये पूरा ही सारा विशेषार्थ नपुसक वेद के बारे में है। अभी तक हमने कौन कौन से प्रकृतियों का उत्कृष्ट संचय देखा?
मिथ्यात्व सम्यक।
उसके बाद हमने 12 कषाय 6-9 कषाय देखे, फिर सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति को भी देखा, और अब नपुसक वेद को देख रहे हैं। कौन से रह गया?
त्रिवेद और पुरुष वेद बाकी,
त्रिवेद पुरुष
और संज्वलन चारों बाकी रह गए।
हमने 12 कषाय लिए थे ना,
संज्वलन चारों बाकी।
तो संज्वलन बाकी है कि अनंतानुबंधी बाकी है?
संज्वलन ही बाकी,
संज्वलन बाकी। पुरुष वेद के बाद उसको ले लेंगे हम, आगे चलकर आएगा वो, यहाँ तो नहीं है ना। संज्वलन बाकी है क्योंकि उसमें सारा वो संक्रमित द्रव्य चला जाएगा। हमने पहले देखा ना, पुरुष वेद का क्रोध में जाएगा, क्रोध का मान में, मान का माया में, इस तरह से। हाँ, अभी पढ़ते हैं। इत्थि वेदस्य उपकस्यम पदेश संतकम्मम कस्य। स्त्रीवेद का उत्कृष्ट, वो उत्कृष्ट बराबर करना, उत्कृष्ट हुआ है, उत्कृष्ट। स्त्रीवेद का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म किसके होता है? यह सूत्र सुगम है। इते गुणित कम्मंसियो असंख्य जवस्सा हुए गदो तम्मी पलिदो मस असंख्य जदि भागे न जम्मी पूरी दो तस्स इत्थि वेदस्य उपकस्यम पदेश संत कम्मम। ये नीचे जो सूत्र की जो साइन है फ्लावर जैसी, वो रह गई है। देखो पहली लाइन में उत्कृष्ट हुए, उसको उत्कृष्ट करना। और नीचे वो सूत्र वाली फ्लावर की साइन रह गई, वहां भी करना। हाँ, वहां से पढ़ते भी। जो गुणित कर्मांश वाला जीव असंख्यात वर्ष की आयु वालों में उत्पन्न हुआ, वहां जिसने पल्ले के असंख्यातवे भाग मात्र आयु को लेकर स्त्री वेद को पूरा किया, उसके स्त्री वेद का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होता है। अब इसका अर्थ देखेंगे। गुणित कर्मांश वाला कहने से जो जीव कुछ अधिक 2000 सागर कम कर्म स्थिति काल तक गुणित कर्मांश वाले जीव का जो लक्षण है उससे युक्त रहा, अर्थात गुणित कर्मांश की सामग्री से सहित रहा, पर्याप्तों में बहुत काल, संक्लेश अधिक बार हुआ, योग अधिक से अधिक, और आयु बंध का काल जगन्य, ये सारे उसने उसके लक्षण पूरे किए। फिर त्रसकायिकों में उत्पन्न होकर 2000 सागर कम कर्म स्थिति काल तक गुणित कर्मांश वाले का लक्षण यानी बादर पृथ्वी कायिक, उसमें पहले रहा, बाद में त्रस में आया है। फिर त्रस कायिकों में उत्पन्न होकर वहां पल्योपम के असंख्यातवे भाग कम त्रस स्थिति काल तक रहा, उसका ग्रहण करना चाहिए। यानी लास्ट में पल्ले का असंख्यातवा भाग कम से ये भाग उसमें रहनी चाहिए, पल्ले का असंख्यातवा भाग कम त्रस स्थिति, क्योंकि अन्यथा उसके गुणित कर्मांशपना बन नहीं सकता। इसका यह मतलब हुआ कि उत्कृष्ट योग और उत्कृष्ट संक्लेश के साथ स्त्री वेद के सुदीर्घ बंधक काल में घुमा, और जगन्य योग और जगन्य संक्लेश के साथ पुरुष वेद और नपुसक वेद के जगन्य बंधक काल में घुमा। यानी स्त्री वेद का बंधक काल दीर्घ था और उसमें भी उत्कृष्ट योग और उत्कृष्ट संक्लेश था, और जब जब पुरुष वेद का बंधकाल और नपुसक वेद का बंधकाल था तब उसका काल भी थोड़ा था और उसका योग और संकलेश भी जगन्य था। अब शंका, कर्म प्रदेशों का संचय भुजगार काल में ही होता है, क्योंकि अल्पतर काल में प्रति समय आने वाले कर्म स्कंधों से अधस्थिति गलना के द्वारा तथा अन्य प्रकृति रूप संक्रमण के द्वारा जाने वाले कर्म स्कंद अधिक पाए जाते हैं। अतः कर्म स्थिति काल तक भ्रमण कराने में हम कोई भी लाभ नहीं देखते, शंकाकार पूछ रहा है। शायद कहा जाए कि भुजगार का काल कर्म स्थिति प्रमाण है, किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि भुजगार का उत्कृष्ट काल भी पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण होता है। तो कहते यह शंका उचित नहीं है, क्योंकि आपने सूत्र का अभिप्राय नहीं समझा। गुणित कर्मांश में यत अल्पत्र काल से भुजगार का काल बहुत है, अतः भुजगार काल में संचित हुए द्रव्य का अल्पतर काल के अंदर निर्मूल विनाश नहीं होता। भुजगार के काल में जो अधिक संचय हुआ है, अल्पतर काल में सबका सब चला नहीं जाता। अतः कर्मस्थिति काल तक भ्रमण कराना निष्फल नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। फिर शंका, यहाँ के अल्पतर काल से भुजगार का काल बहुत है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? उसका समाधान, यदि ऐसा न होता तो स्त्री वेद के उत्कृष्ट संचय को बतलाने वाले उक्त चूर्णी सूत्र की रचना ही नहीं होती। अब कहते भुजगार का काल पल्ले के असंख्यातवे भाग कहाँ है? उतने काल तक भ्रमण करने वाले जीव के भी गुणित कर्मांशिकपना बन जाता है, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से पहले कहे गए मिथ्यात्व के उत्कृष्ट प्रदेश संचय को बतलाने वाले सूत्र के साथ विरोध आता है।
समझ में नहीं आया कुछ,
ये नहीं समझ में आया ना।
ये भुजागर का उत्कृष्ट काल हमने पल्ले का असंख्यात्व भाग प्रमाण देखा है।
हाँ, भुजाकार का लगातार का काल,
अल्पतर का तो हमने पल्ले का असंख्यात्व भाग देखा था, पर भुजाकार का पल्ले का असंख्यात्व भाग
प्रदेश संचय की बात है ना, भुजाकार की मूल प्रकृति में ये देखो। भुजाकार वगैरह देखना हमको, ये मिलेगा यहाँ पर 24 पद निक्षेप के पहले होगा ना, 30 कालानुगम। भुजगार पहले लिया था 28 पर, अभी भुजगार का काल लेना पड़ेगा। ये है 29 पृष्ठ पर। हाँ, 29 पर देखेंगे, फिर 40 पर देखेंगे। हाँ, 40 नंबर का पॉइंट, 29 पृष्ठ। यहाँ क्या लिखा है, ओग से मोनी की भुजगार और अल्पतर विभक्ति का जघन्य काल एक समय, और उत्कृष्ट काल कितना लिखा, पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण। वही बात यहां देख रहे, ये जो हमने देखा ना 29 पृष्ठ का रेफरेंस
पॉइंट 40
पल्ले का असंख्यात्व भाग जो कहा, पेज नंबर 29। देखो पढ़ते हैं। भुजगार का काल पल्ल के असंख्यातवे भाग कहा है, उतने काल तक भ्रमण करने वाले जीव के भी गुणित कर्मांशिक पना बन जाता है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से पहले कहे गए मिथ्यात्व के उत्कृष्ट प्रदेश संचय को बतलाने वाले सूत्र के साथ विरोध आता है। यानी उतने ही काल में गुणित कर्मांशिक बन जानेगा ऐसा कोई कहे तो 2000 सागर घुमाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये कहना चाहते। शंका, असंख्यात वर्ष की आयु वालों में उत्पन्न हुआ ऐसा किस लिए कहा? नपुसक वेद के बंद की विच्छित्ति करके उसके काल के संख्यात बहुभागों में स्त्रीवेद का बंद कराने के लिए असंख्यात वर्ष की आयु वालों में उत्पन्न हुआ यह कहा?
ये नपुसक वेद की बंद की विच्छित्ति पहले गुणस्थान में, स्त्रीवेद की दूसरे गुणस्थान में।
हाँ,
तो क्या ये चौथे गुणस्थान वाला तो स्त्रीवेद का बंध नहीं करेगा? तो यहाँ पे ये जो बताया नपुसक वेद की बंध की विच्छुति काल,
देखो असंख्यात वर्ष आयुष के यानी भोग भूमि वाले वो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में।
हाँ।
देवायु बांधने वाला नपुसक वेद का बंध करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, समझ में? देव तो करेंगे नपुसक वेद का बंध।
अच्छा, गुणस्थान की अपेक्षा करती
हो। आपने बहुत अच्छा पूछा प्रश्न कि पहले गुणस्थान में तो नपुसक वेद का बंध होता है, आगे तो नहीं होता है। कोई समय दृष्टि को लेते हैं तो उसके तो नपुसक वेद क्या स्त्री वेद का भी बंध रुक गया है, अभी दोनों की बंध विच्छित्ति हुई है, तो ऐसा यहाँ क्यों लिया? तो यहाँ जो लिखा है नपुसक वेद के बंध की विच्छित्ति करके, क्योंकि जो भोग भूमि वाला जीव है वो देवगति का ही बंध करेगा ना, और देवगति के साथ स्त्री या पुरुष वेद का बंध करेगा।
दूसरे गुणस्थान में तो इतना लंबा काल नहीं रह सकता।
नहीं, बराबर है, उसके साथ केवल वो तो स्त्री या पुरुष वेद का बंध करेगा, इसलिए बंध की विच्छित्ति कही वहां पर। अब आगे, यहाँ त्रसकायिकों में स्त्रीवेद का बंध करते हुए बहुत बार असंख्यात वर्ष की आयु वाले तिर्यंश और मनुष्यों में उत्पन्न कराना चाहिए, ऐसा सूत्र का अभिप्राय है। यहाँ असंख्यात वर्ष में देवों को नहीं लेना है, नारकियों को नहीं लेना है, असंख्यात आयु वाले जब कह रहे हैं तो भूगभूमि वालों को लेना है, असंख्यात वर्ष आयु वाले तिर्यंश और मनुष्यों में, इसका अर्थ क्या है? भूगभूमि वाले। जिस असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीव की आयु पल्ले के असंख्यात पे भाग है, वह पल्ले के असंख्यात पे भाग काल के द्वारा उसे पूरा करे। इससे यह बतलाया है असंख्यात वर्ष की आयु वाले तिर्यंच और मनुष्यों में उत्पन्न होते हुए भी पल्ले के असंख्यात पे भाग प्रमाण आयु वालों में ही बहुत बार उत्पन्न हुआ। भोग भूमि वालों को असंख्यात वर्षायुष कहते हैं, तो भोग भूमि की मिनिमम आयु कितनी है? हाँ,
मैक्सिमम तीन पल्ले,
मैक्सिमम तीन पल्ले बता रहे हमने, कम से कम।
हाँ, नहीं पल्ले का असंख्यात
भाग, हमको नक्की बताओ ना कितने। एक पल्ले जगन्य भोग भूमि की उत्कृष्ट आयु है 1 करोड़ पूर्व प्लस एक समय, फिर भी उनको असंख्यात वर्षायुष वाले कहेंगे, क्योंकि भोग भूमि वालों 1 करोड़ पूर्व प्लस एक समय, कर्म भूमि की उत्कृष्ट आयु 1 करोड़ पूर्व है, उसमें एक समय अधिक कर दो तो भोग भूमि की जघन्य आयु होगी, जघन्य भोग भूमि की जघन्य आयु।
ये भोग भूमि वाला वापस भोग भूमि में तो जन्म नहीं,
नहीं जाता। भोग भूमि वाला नियम से देव में ही जाता है, मिथ्या दृष्टि भवनत्रिक में और सम्य दृष्टि सौधर्म ईशान में, ये तो नियम है।
अच्छा, सो ये देव और भोग भूमि में नहीं, पीछे वापस
देव भोग भूमि में नहीं आते हैं।
हाँ, वापस मनुष्य भी आती रहे,
कर्म भूमि में आएंगे
और वापस भोग भूमि में जाएंगे,
जा सकते हैं। तो ये पल्ले के असंख्यात भाग तक भुजगार है, इसलिए वो पल्ले के असंख्यात भाग भुजगार किया, उतनी आयु वाला जन्मा वहाँ पर, और फिर देव में गया, फिर मैं मनुष्य तिरंच में आकर फिर वहां चला गया। भोगभूमि का मनुष्य ही होना चाहिए ऐसी बात नहीं, तिरंच भी होवे मनुष्य भी होवे। तो वहां बहुत बार उत्पन्न कराया। तो कहते इन्हीं में बहुत बार क्यों उत्पन्न कराया? ऊपर की आयु वाले जीवों के स्त्री वेद के बंध काल से पल्ले के असंख्यात वे भाग आयु वाले जीवों का स्त्री वेद का बंध काल बहुत अधिक है। क्या कहते हैं?
ये सब याद रखना बहुत मुश्किल है।
अभी याद रखना ही नहीं, पढ़ना है, जब पढ़ते उसका अर्थ समझना है, और कुछ नहीं करना। अतः बहुत द्रव्य के संचय के लिए पल्ले के असंख्यात विभाग आयु वालों में बहुत बार उत्पन्न कराया। फिर शंका, ऊपर की आयु वाले जीवों के स्त्रीवेद के बंध काल से पल्ले के असंख्यात विभाग आयु वाले जीवों का स्त्रीवेद का बंध काल अधिक है, यह किस प्रमाण से जाना? ये थोड़े छोड़ेगा, ऐसा आपने बता दिया। इसी चूर्णी सूत्र से जाना अथवा युक्ति से जाना। वह युक्ति इस प्रकार है, पुरुष वेद की अपेक्षा स्त्री वेद अप्रशस्त है, क्योंकि वह कंडे की आंख के समान होता है। अतः स्त्री वेद संक्लेश परिणाम से बनता है और पुरुष वेद विशुद्ध पावन से बनता है। पल्ले के असंख्यात वे भाग आयु वालों में जो संक्लेश का काल है वो ऊपर की आयु वाले जीवों के संक्लेश से संबंध रखने वाले काल से अधिक है, क्योंकि दीर्घ आयु वाले जीवों में विशुद्धि सहित मंद संक्लेश से संबंध रखने वाले पुरुष वेद के बंध काल की प्रधानता होती है। जो दीर्घ आयु वालों में मंद कषाय रूप विशुद्धि ज्यादा है, ऐसा कहते हैं। शंका, पल्ले के असंख्यात वे भाग आयु वालों में संक्लेश बहुत है, यह किस प्रमाण से जाना? तीन पल्ले की आयु वाले जीवों में संक्लेश सबसे कम है, उससे दो पल्ले की आयु वाले जीवों में अनंत गुना संक्लेश है, ओहो, उससे एक पल्ले की आयु वाले जीवों में अनंत गुना संक्लेश है, और उससे पल्ले के असंख्यात वे भाग आयु वाले जीवों में संक्लेश अनंत गुना है। इस अल्प बहुत्व को बतलाने वाले सूत्र से जाना।
वाले ज्यादातर श्रीवेद के साथ जन्म लेंगे, ऐसा है? ऐसा तो नहीं घटित।
नहीं नहीं नहीं, संक्लेश किसका ज्यादा है कम है उसकी बात है।
नहीं, पर यहाँ पे श्रीवेद का ज्यादा,
जो उत्कृष्ट भोगभूमि वाले उनमें संक्लेश कम है, पुरुष वेद का बंध ज्यादा होगा। अतः तीन पल्ले के आयु वाले जीवों में स्त्री वेद का बंध काल सबसे थोड़ा है, संकलेश परिणाम में उसका बंध होता है। दो पल्ले के आयु वाले जीवों में स्त्री वेद का बंध काल संख्यात गुना है, एक पल्ले के आयु वाले जीवों में स्त्री वेद का बंध काल संख्यात गुना है, और पल्ले के असंख्यात वे भाग मात्र स्थिति वाले जीवों में स्त्री वेद का बंध काल उससे भी संख्यात गुना है, यह सिद्ध हुआ। यहाँ वेद के बंध काल विशेष अधिक है, ऐसा क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? नहीं, क्योंकि विषय के प्रतिभाग के अनुसार ही काल का गुणकार उत्पन्न होता है, यानी उसके अनुसार ही काल का भी गुणकार, यानी उसका प्रोपोर्शन उसी पद्धति से होगा। इस प्रकार असंख्यात वर्ष की आयु वाले उस जीव के अंतिम समय में स्त्रीवेद का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होता है, क्योंकि उसने बंध ज्यादा किया है। इसलिए अब यहाँ पर संचयानुगम और भागहार प्रमाणानुगम का कथन नपुसक वेद के समान ही करना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है, त्रसकाय स्थिति में भ्रमण करते हुए जहाँ जहाँ असंख्यात वर्ष की आयु वालों में उत्पन्न हुआ वहाँ वहाँ नपुसक वेद का बंध नहीं होता। क्योंकि देवगति के बंध के साथ नपुसक वेद के बंध का विरोध है तथा नपुसक वेद के बंध काल के संख्यात बहुभाग को स्त्री वेद प्राप्त करता है। जहाँ वो नपुसक वेद में हमने तीन वेदों में जो काल का प्रमाण बांटा था, नपुसक वेद का ज्यादा है, फिर स्त्री वेद का, पुरुष वेद का, वो सबसे ज्यादा। अब वो नपुसक वेद का होता ही नहीं तो उसका बड़ा भाग स्त्री वेद में चला जाएगा। तो नपुसक वेद के बंध काल के संख्यात बहुभाग को स्त्री वेद प्राप्त करता है क्योंकि प्रक्षेप भूत पुरुष वेद और स्त्री वेद के बंध कालों के प्रक्षेप भूत यानी स्त्री वेद और पुरुष वेद का बंध काल का जोड़ देना, उसके प्रतिभागानुसार प्रक्षेपक संक्षेपेण इस कर्ण सूत्र के अनुसार अपना अपना भाग उपलब्ध हो जाता है। हमने देखे ना पुरुष वेद का बंध काल छोटा है, उससे स्त्री वेद का ज्यादा है, उससे नपुसक वेद का ज्यादा है। अपना नपुसक वेद का होता ही नहीं है तो उसमें भी उसका स्त्री वेद पुरुष वेद का प्रोपोर्शन वही रहेगा, यानी स्त्री वेद का बंध काल ज्यादा होगा। शंका, असंख्यात वर्ष की आयु वालों में स्त्री वेद का संचय काल असंख्यात गुणहानि प्रमाण है, यह कैसे जाना? उसका समाधान, असंख्यात गुणहानि प्रमाण है, एक गुणहानि दो गुणहानि जो हमने देखा ना, डेढ़ गुणहानि प्रमाण होता है। प्रदेश, प्रदेश कितना होता है? समय प्रबद्ध गुणा डेढ़ गुणहानि। तो यहाँ तो कहते हैं असंख्यात गुणहानि प्रमाण है कैसे जाना, यहाँ कहाँ लिखता है, लिखा था असंख्यात गुणहानि। तो समान, स्त्री वेद के उत्कृष्ट द्रव्य से शोक का उत्कृष्ट द्रव्य विशेष अधिक है। आगे कहे जाने वाले इस अल्पभूत विषयक सूत्र से जाना। फिर शंका, असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीवों में स्त्री वेद के बंध काल से शोक का बंध काल विशेष अधिक है। अतः यदि स्त्री वेद का संचय काल संख्यात गुणहानि प्रमाण हो या एक गुणहानि प्रमाण हो तो भी पूर्वोक्त अल्पभूत्व बन जाता है क्योंकि उससे उसका विशेष अधिक है, ऐसा आया है।
यहाँ पे शोक का क्यों बताया?
उससे उन्होंने डिराइव किया है, आगे आएगी ना बात, बता रहे भी। इसलिए इस अल्पभूत्व से यह नहीं जाना जा सकता कि असंख्यात वर्ष की आयु वालों में स्त्री वेद का संचय काल असंख्यात गुणहानि प्रमाण है। समाधान, तो फिर ऐसा लेना चाहिए, यदि असंख्यात वर्ष की आयु वालों में स्त्री वेद का संचय काल असंख्यात गुणहानि प्रमाण न हो तो उसका उत्कृष्ट द्रव्य ही नहीं बन सकता। अतः स्त्री वेद का संचय काल असंख्यात गुणहानि प्रमाण है ऐसा ग्रहण करना चाहिए तथा यह काल दुर्लभ भी नहीं है क्योंकि संख्यात आवली का अंतर दे देकर असंख्यात बार असंख्यात वर्ष की आयु लेकर उत्पन्न होने वाले जीव के ऐसा काल पाया जाता है। संख्यात आवली यानी अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त का अंतर देकर, ने देवों में से मनुष्य में आया और अंतर्मूर्त में भूगमि में गए। हाँ, करोड़ पूर्व की आयु वाला भी नहीं, आयु ही छोटी लेके आए, वो पर्याप्त की आयु लेकर आया। अतः इस काल में संचित हुआ द्रव्य संख्यात वे भाग कम डेढ़ गुणहानि मात्र पंचेंद्रिय जीव के समय प्रबद्ध प्रमाण होता है। फिर शंका, इन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है विशेषार्थ में, क्या आगे देके दिया है विशेषार्थ दिया ही नहीं इसका। तो कहते डेढ़ गुणहानि में संख्यात वा भाग क्यों कम किया? समाधान, पुरुष वेद संबंधी द्रव्य को उसमें से घटाने के लिए कम कर दिया। फिर शंका, पुरुष वेद संबंधी द्रव्य का भाग डेढ़ गुणाने के संख्यात्वे भाग प्रमाण है, यह कैसे जाना? क्योंकि पुरुष वेद के बंधक काल से स्त्री वेद का बंधक काल संख्यात गुना है। उल्टा लेंगे कि उससे संख्यात्वे भाग प्रमाण, स्त्री वेद के बंधक काल से पुरुष वेद का बंधक काल संख्यात्वे भाग प्रमाण है।
पर यहाँ पे तो ये जो द्रव्य का संचय है तो वो असंख्यात गुणा बताया, समय प्रबद्ध असंख्यात गुणा,
समय प्रबद्ध को असंख्यात गुणा नहीं किया है, असंख्यात गुणहानि केवल कह दिया उन्होंने। डेढ़ गुणहानि से गुणित समय प्रबद्ध ये अलग बात है और असंख्यात गुणहानि अलग बात है। देखो ना, वहाँ डायरेक्ट असंख्यात गुणहानि प्रमाण दिया है और यहाँ लिख रहे डेढ़ गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध में से कुछ कम दिया। डेढ़ गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध में से कुछ कम और वहाँ तो असंख्यात गुणहानि इतना ही लिया।
तो
संचय काल, अच्छा संचय काल लिया है।
हाँ।
काल लिया असंख्यात गुणहानि प्रमाण। और उसका द्रव्य कितना है तो डेढ़ गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध में से संख्यात्व भाग कम, क्योंकि संख्यात्व भाग काल में पुरुष वेद का बंधन किया था। तो संख्यात्व भाग क्यों कम किया? पुरुष वेद संबंधी द्रव्य को उसमें से घटाने के लिए कम किया। शंका, पुरुष वेद संबंधी द्रव्य का भाग डेढ़ गुणहानि के संख्यात विभाग प्रमाण है, ये कैसे जाना? क्योंकि पुरुष वेद के बंधक काल से स्त्री वेद का बंधक काल संख्यात गुणा है। यहीं रुकते हम। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नो सदा देत हो। अश्विन भाई,
नमो यंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो उज्जैनम नमो लोए सब्बसावनम। नमो यंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो उज्जैनम नमो लोए सब्बसावनम। नमो यंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो उज्जैनम नमो लोए सब्बसावनम। नमो यंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो उज्जैनम नमो लोए सब्बसावनम। नमो यंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो।